सुमन को होश आ गया था। आर्यांश और दीवा उनके सामने खड़े हुए थे। आर्यांश सुमन को स्ट्रेस ना लेने के लिए समझा रहा था। इस बीच आर्यांश के मुंह से निकला कि वो सुमन को अब पेलिंग के बजाय मुंबई लेकर जाने वाला है। ये सुनते ही दीवा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो आर्यांश को पेलिंग जाने के बारे में बताने के लिए आई थी। उसे लगा था कि एक दो हफ्ते बाद आर्यांश भी वहीं लौट आएगा, पर वो मुंबई जाने की बात कर रहा था। दीवा जिस प्रोजेक्ट के चलते पेलिंग आई थी वो लंबा चलने वाला था। इस प्रोजेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीवा की थी। जब तक हॉस्पिटल अच्छे से स्टेबल नहीं होने वाला था तब तक दीवा को वहीं पर रहना था। दीवा को ये सोचकर ही बुरा लग रहा था कि वो और आर्यांश दोबारा मिले तो भी इतने कम वक्त के लिए। सुमन की नज़रें दीवा की ही तरफ थीं। उसे परेशान देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं। दीवा ने तुरंत इस बात को नोटिस कर लिया था। उसने जल्दी से आर्यांश की बाँह पकड़ी और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अभी आपको आर्यांश ने समझाया था कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और होश में आते ही आपने ओवरथिंकिंग शुरू कर दी ना। बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ है। आपकी तबीयत ठीक हुई है और हमारे बीच सब ठीक हुआ है। अब किस बात का स्ट्रेस है आपको? आर्यांश दीवा की तरफ घूर कर देखने लगा। दीवा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बिल्कुल धीमी आवाज़ में बड़बड़ा कर बोली, हमें अलग देख कर इन्हें दुख होता है। हो सकता है उनकी तबीयत खराब होने का एक कारण ये भी हो। आर्यांश दीवा का इशारा समझ गया था। उसने सुमन की तरफ देखा और कहा, हाँ दीवा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो हमारे बीच में सब सही है। मैंने सब ठीक कर दिया, अब आपकी बारी है। डॉक्टर ने कहा है कि आप 2 वीक के लिए यहाँ रुकने वाली हैं और वह आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। अगर कोई इशू नहीं हुआ तभी आपको डिस्चार्ज मिलेगा। सोच लीजिए कि आपको इसी हॉस्पिटल में रहना है या मेरे साथ जाना है। दीवा ने सिर हिलाकर आर्यांश की बात पर सहमति जताई और बोली, और आपकी तबीयत खराब होगी तो सारा ब्लेम भी मुझ पर आएगा कि मैंने जिद करके आपकी सर्जरी की थी। अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए खुद का ख्याल रखिए। दीवा और आर्यांश सुमन को ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे थे। सुमन उन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया था। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसकी जिंदगी में आर्यांश था, और अब तो आर्यांश की लाइफ में दीवा भी वापस आ गई थी। अब शायद सब कुछ पहले की तरह हो जाए। चलिए हम बाद में मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें ज्यादा टाइम नहीं दिया है। जब भी वो हमें मिलने की इजाज़त देंगे मैं और दीवा दोनों आपसे मिलने के लिए आएंगे। आर्यांश ने प्यार से सुमन के हाथ को सहलाते हुए कहा। उसने दीवा की तरफ देखा ताकि वो भी सुमन को तसल्ली दे, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत दीवा ने हल्की मायूसी से कहा, मैं आपसे रोज तो मिलने नहीं आ सकती, लेकिन जब भी हॉस्पिटल से फ्री होंगी तब संडे को जरूर आऊंगी। एक्चुअली मैंने पहले ही काफ़ी दिन यहाँ बिता लिए हैं, तो मुझे वापस पेलिंग जाना होगा। एटलीस्ट 2 वीक्स तक तो वापस मिलने जरूर आऊंगी। दीवा के कहने का मतलब आर्यांश और सुमन दोनों ही समझ रहे थे। दीवा शायद वहाँ इसीलिए आई थी ताकि वो आर्यांश को वहाँ से जाने के बारे में बता सके, पर सुमन के होश आने का सुनने पर वो सीधा उससे मिलने चली आई थी। इस बात पर सुमन परेशान ना हो कि दीवा को पेलिंग में रहना होगा और आर्यांश मुंबई जाने का सोच रहा था। ये ख्याल आते ही दीवा ने आर्यांश की तरफ देखकर हल्के लहजे में कहा, लगता है कुछ दिनों तक हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी होगी। उम्मीद है कि मिस्टर सीईओ को मुंबई जाने के बाद मेरे लिए इतना टाइम होगा कि वो कभी कभार मुझसे मिलने पेलिंग आए, या फिर कॉल तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। बोलते हुए दीवा की आवाज़ हल्की कांपने लगी थी। सच तो ये था कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं हुआ था, उल्टा दीवा ही सब ठीक करने के लिए एफर्ट्स कर रही थी। दीवा को यही लग रहा था कि अगर वो यहाँ से चली गई तो आर्यांश उससे कभी मिलना तो दूर, बात करने के लिए कॉल तक नहीं करेगा। आर्यांश ने हल्के से सिर हिला दिया था। सुमन को अपना ख्याल रखने का बोलकर वे दोनों बाहर आ गए थे। दीवा ने वैशाली से सुमन के होश में आने तक का वक्त लिया था, और अब वो समय आ गया था जब दीवा को वापस जाना था। दीवा अपनी उस जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं भाग सकती थी। उसने पूरी पैकिंग भी कर ली थी। जैसे ही वे दोनों सुमन के कमरे से बाहर आए, आर्यांश ने दीवा के चेहरे की तरफ देखा। वो काफी उदास नजर आ रही थी। आर्यांश को समझ नहीं आया कि वो दीवा को कैसे तसल्ली दे। वो बस चुपचाप उसके साथ सुमन के कमरे के सामने लगी बेंच पर बैठा हुआ था। कुछ देर की चुप्पी के बाद आर्यांश ने हिचकती आवाज में कहा, तो ये प्रोजेक्ट लंबा चलने वाला है, कितने महीने लगेंगे? कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। डॉक्टर सिप्पी ने पहले कह दिया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाने वाले हैं। हॉस्पिटल स्टेबल भी हो गया तो उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हुए डायरेक्टर बनाने का फैसला किया था, दीवा ने भरी आवाज में बताया। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस रखी थी और मुश्किल से ही अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रखा था। सो तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम हमेशा से एक अच्छी डॉक्टर रही हो, और आज पहली बार अपनी आंखों के सामने मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है, आर्यांश ने जवाब दिया।
दीवा की तसल्ली के लिए उसने अपने होठों पर बिल्कुल छोटी सी मुस्कुराहट ओढ़ रखी थी। वो चाहे कितना भी ये जाहिर करने की कोशिश कर ले कि दीवा को आगे बढ़ना चाहिए, वो दीवा के लायक नहीं है, लेकिन दीवा के जाने का सुनकर तकलीफ तो उसे भी हो रही थी। ऊपर से उसने मिस्टर पृथ्वी कपूर को भी प्रॉमिस किया था कि वो आकर सब संभालेगा। सुमन ठीक हो गई थी तो उसका भी वादा निभाने का वक्त आ गया था। आर्यांश की तारीफ करने पर दीवा को गुस्सा भी आ रहा था। वो यहाँ उसकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी थी। उसे आर्यांश के मुंह से ये सुनना था कि सुमन के सामने उसने झूठ नहीं बोला था, वो उनके रिश्ते को एक और चांस देगा। दीवा से आर्यांश की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जल्दी से उसके पास से उठी और बोली, मुझे कुछ पैकिंग देखनी है, उसके बाद समय पर बस स्टॉप भी पहुंचना होगा। क्या तुम मुझे बाई कहने के लिए मेरे साथ चलोगे? सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा, सुमन माँ को होश आ गया है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, आर्यांश ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। वो दीवा को अपनी आंखों के सामने जाते हुए नहीं देख सकता था। दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आई थी। बस स्टॉप हॉस्पिटल से मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पर था, और क्या यहाँ का मेडिकल स्टाफ सुमन का एक डेढ़ घंटे के लिए भी ख्याल नहीं रख सकता था? दीवा अच्छे से जानती थी कि आर्यांश को दिन में सिर्फ एक बार सुमन से मिलने की इजाजत थी, फिर भी उसने सुमन का नाम लेकर उसके साथ आने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, दीवा ने इतना ही कहा और फिर बिना आर्यांश की तरफ देखे सीधा अपने कमरे में जाने के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ पलटते ही उसकी आंखों से कैद आंसू बाहर आने लगे थे। न जाने वे कब से उस कैद से बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे। दीवानी जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कमरे में आकर बचा हुआ सामान भी समेट लिया था। कहने को वो एक हॉस्पिटल का एक मामूली सा कमरा था और दीवा वहां कुछ दिनों के लिए रही थी, लेकिन उस कमरे के साथ उसकी काफी सारी यादें जुड़ गई थी। दीवा पूरी उम्र यहां नहीं बिता सकती थी, उसे यहां से जाना ही था। दीवा ने खुद को सख्त किया और जाने से पहले वो सुमन का ख्याल रख रहे अटेंडिंग डॉक्टर से मिली। आप पूरे दो वीक के लिए उनके हर एक सेकंड को मॉनिटर करेंगे और कहीं पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आए आप सीधा मुझे कॉल करेंगे, दीवा ने उन्हें हिदायत दी।
बिल्कुल डॉक्टर गोयनका, आई विश कि हम आपको हमेशा के लिए हायर करके रख सकते। बस मेरे दिमाग में एक सवाल कब से आ रहा है, आप इतनी काबिल हैं फिर पेलिंग के उस छोटे से हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? उस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी जनरल फिजिशियन संभाल सकता है, वो अपनी शुरुआती फेज में है। हाँ, डेवलपमेंट के बाद वहाँ अच्छे सर्जन्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तो वहाँ ठीक से ऑपरेशन थिएटर तक नहीं बना हुआ है। क्या आपको इतनी छोटी जगह में अपना टैलेंट ज़ाया करना बुरा नहीं लगता? डॉक्टर भट्ट ने पूछ लिया था, जब से उन्हें पता चला था कि दीवा पेलिंग के बेकार पड़े हॉस्पिटल के डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते आई थी। शायद मेरी ज़रूरत वहाँ ज़्यादा है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी की सर्जरी करूँ या फिर लोगों की छोटी मोटी बीमारियों के लिए किसी हॉस्पिटल में रहूँ, दीवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और इतना डॉक्टर भट्ट को बताने के लिए काफ़ी था कि दीवा संजीवनी हॉस्पिटल के बजाय पेलिंग में क्या कर रही थी। वो हॉस्पिटल भले ही छोटा हो, पर उस शहर के लोगों के बीच एक अच्छा डॉक्टर नहीं था। उनकी छोटी बीमारियों के लिए भी उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता था। क्या ऐसे में ये सही नहीं था कि दीवा वहाँ रहकर उनका इलाज करे जहाँ उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी? जल्द ही दीवा के वहाँ से जाने का टाइम हो गया था। आर्यांश जानता था कि दीवा इस वक्त डॉक्टर भट्ट से मिलने के लिए गई है। वो परेशानी में उनके केबिन के बाहर ही चक्कर लगा रहा था। दीवा डॉक्टर भट्ट के साथ बाहर निकली तो आर्यांश को सामने देखकर वो हैरान थी। दीवा ने उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा तो आर्यांश खुद ही जवाब में बोल पड़ा, वो थैंक यू कहने के लिए आया था, तुमने सुमन माँ के लिए जो भी किया वो, आर्यांश हड़बड़ाते हुए बोल रहा था। तभी दीवा उसे काटते हुए बीच में बोली, इट्स ओके मिस्टर कपूर, एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा काम था और उनके साथ तो मेरा एक रिश्ता भी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट ना हो और आप सब उनका अच्छे से ख्याल रखें। आई हैव टू गो, दीवा ने काफ़ी फॉर्मली जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ सामान लेने के लिए जाने लगी। इस बार दीवा ने खुद को सख्त कर लिया था और ठान लिया था कि वो आर्यांश की तरफ पलट कर नहीं देखेगी, वरना उसका वहां से जाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आर्यांश ने दीवा को साथ जाने से मना तो कर दिया था, लेकिन अब वो दूर खड़ा अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बांधे उसे जाते हुए देख रहा था। दीवा को बार बार ये समझाने वाला आर्यांश कि उसे उनके रिश्ते से आगे बढ़ना चाहिए, आज वो खुद दीवा को जाते देख रहा था तो उसे अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही थी। क्या मतलब, कभी मुंबई वापस नहीं आएगी? अकेले ठीक से रहना तक नहीं आता है, टाइम से खाना नहीं बना पाती है और उसे इस जगह पर सालों बिताने हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे रहती है, क्या ऐसे किसी जगह का डेवलपमेंट होता है, आर्यांश दांत पीसते हुए खुद से बड़बड़ाकर बोला। जब से उसे पता चला था कि दीवा उस प्रोजेक्ट के चलते हमेशा पेलिंग में रहने का सोच रही थी, तब से वो गुस्से में भड़का हुआ था। फिलहाल इन दोनों की जो सिचुएशन चल रही है उसके बाद मुझे चलते चलते मूवी का टाइटल ट्रैक याद आ रहा है, प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है फिर ये कैसे गिले हो गए। खैर ये आर्यांश है, सब बिल्कुल अच्छे तरीके से सही करेगा, वरना आरव होता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो अपने गुस्से में किस तरह रायते फैलाने वाला था। खैर छोड़िए, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।